एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों पर गहरा असर डाला है, मिचेल बॉम की ट्यूजडेज विद मौरी।
हाँ, इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है और ये कहानी है एक बिल्कुल अनोखी दोस्ती की,
और दोस्ती के साथ साथ जीवन के उन जरूरी सबकों की जो हम अक्सर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ देते हैं।
बिल्कुल। मैं हूं आपकी साथी मेजबान और आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी परतों को समझने की कोशिश करेंगे।
और ये आज भी उतनी ही जरूरी लगती है ना?
शायद पहले से भी ज्यादा। देखिए ना, आज जैसे सफलता को पैसे, स्टेटस, इन सब चीजों से तौला जाता है और कई लोग महसूस करते हैं कि अंदर कहीं एक खालीपन है या समझ नहीं आता किधर जाएं। तो ऐसे में मौरी श्वार्ट्ज के जो अंतिम पाठ है वो शायद हमें कुछ दिशा दिखा सकते हैं।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन आखिर है क्या?
सही बात है।
तो चलिए शुरू करते हैं लेखक से, मिच एल्बम। जब ये सब हुआ, वो कोई मतलब दार्शनिक या कोई आध्यात्मिक गुरु टाइप नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस समय अमेरिका के एक बहुत ही कामयाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। डिट्रॉइट फ्री प्रेस के लिए लिखते थे, ESPN पर भी आते थे।
हाँ, मतलब उनकी जिंदगी डेडलाइन, ट्रैवल, हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज, इसी सब के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे आजकल की दुनिया में सक्सेस का पैमाना माना जाता है।
और शायद यही बात इस किताब को और खास बनाती है। मिच खुद भी मानते हैं कि उस वक्त वो जिंदगी की, जिसे कहते हैं ना चूहा दौड़, उसमें कहीं खो से गए थे। थोड़े शायद शंकालु भी थे। तो उनकी जो अपनी यात्रा है, एक बिजी करियर पर फोकस करने वाले इंसान से एक ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा करुणामय व्यक्ति बनने तक की, वो पढ़ने वाले को भी अपने साथ ले चलती है।
और क्योंकि वो मौरी के पुराने स्टूडेंट थे और उनकी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि थी,
हाँ, उसकी वजह से उनकी लिखने की शैली बहुत साफ है, सीधी है और सीधे दिल तक पहुंचती है। वो बड़े सवाल उठाते हैं लेकिन बहुत ही सरल आम भाषा में।
एक और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में तो उन्होंने किताब लिखने का सोचा था मौरी के जो मेडिकल बिल्स बढ़ रहे थे उसमें मदद करने के लिए।
हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल वजह थी।
प्यार और सम्मान का एक छोटा सा कदम जो बाद में मिच के जीवन का शायद सबसे प्रभावशाली काम बन गया। ये अपने आप में मौरी के सबकों का एक सबूत है ना?
बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी नेक इरादे वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल जाते हैं।
तो किताब की कहानी असल में है क्या?
ट्यूजडेज विद मौरी दरअसल मिच एल्बम और उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, समाजशास्त्र पढ़ाते थे, मौरी श्वार्ट्ज।
हाँ।
उनके बीच हुई असली मुलाकातों का आप कह सकते हैं एक संस्मरण है। कॉलेज खत्म होने के कोई 16 साल बाद मिच, जो अब कामयाब तो हैं पर शायद अंदर से उतने खुश नहीं, वो एक रात टीवी पर अपने पुराने प्यारे प्रोफेसर को देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि मौरी को ALS नाम की एक ला इलाज बीमारी हो गई है।
ALS यानी वो बीमारी जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं पर दिमाग आखिर तक तेज रहता है।
बिल्कुल। तो मिच, जो इतने सालों से प्रोफेसर के संपर्क में नहीं थे, वो थोड़े अपराध बोध के साथ उनसे मिलने जाते हैं।
और वो एक मुलाकात?
हाँ, वो एक मुलाकात फिर हर मंगलवार होने वाली मुलाकातों का एक सिलसिला बन जाती है। मिच हर हफ्ते डेट्रॉइट से बॉस्टन जाते हैं अपने मरते हुए प्रोफेसर के पास बैठने और उनसे जिंदगी के वो सबक सीखने जो शायद सबसे अहम है।
ये मुलाकातें एक तरह से मौरी की भाषा में ही कहें तो जीवन के अर्थ पर उनका एक अंतिम कोर्स बन जाती हैं।
सही।
किताब हमें दो लेवल पर ले जाती है ना? एक तरफ तो मौरी के शरीर का धीरे धीरे साथ छोड़ना।
हाँ, वो बहुत ईमानदारी से लिखा गया है। चलने के लिए सहारे की जरूरत से लेकर फिर बिना मदद के खा भी नहीं पाना, सांस लेने में दिक्कत होना।
मिच ने उसे बिना किसी लाग लपेट के बहुत सच्चाई से बयान किया है, लेकिन इसी के बिल्कुल समानांतर मौरी की जो मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कमाल की है। उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी मौत को अपना अंतिम प्रोजेक्ट बनाएंगे।
अंतिम प्रोजेक्ट मतलब
वो इस अनुभव का अध्ययन करेंगे, इसे जिएंगे और जो कुछ भी सीखेंगे उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे। ये एक बहुत सचेत चुनाव था उनकी तरफ से।
और दूसरी यात्रा मिच के अंदर की है, उनका अपना बदलाव।
हाँ, शुरू में वो थोड़े असहज है ना, काम के फोन कॉल्स आते रहते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने में हिचकिचाते हैं।
बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे मौरी के प्यार और उनकी बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में वो बदलते हैं। वो ध्यान से सुनना सीखते हैं, वर्तमान पल में जीना सीखते हैं
और अपने जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर सवाल उठाना सीखते हैं। उनका लक्ष्य अब सिर्फ मिलना नहीं रह जाता, नहीं बल्कि सीखना और बनलना बन जाता है। और कहानी मौजूदा मुलाकातों और मिच के कॉलेज के दिनों की यादों के बीच बहुत खूबसूरती से चलती है, जिससे दोनों के रिश्ते की गहराई और पता चलती है।
अच्छा, तो अब आते हैं मौरी के उन पाठों पर, उन लेसन्स पर। किताब में हर मंगलवार एक नया विषय होता है, लेकिन हम उन्हें कुछ बड़े आइडियाज के तहत देख सकते हैं।
हाँ, शायद पहला बड़ा सबक है वास्तविकता का सामना करना, खासकर जो मुश्किल चीजें हैं, जैसे मृत्यु, अफसोस या खुद पर तरस खाना।
मृत्यु, जिसको लेके हम अक्सर बात करने से बचते हैं।
हाँ, पर मौरी ने कहा कि उसे अनदेखा करने की बजाय उसे गले लगाओ। उनका वो बहुत मशहूर कोट है ना, जब तुम मरना सीख जाते हो तब तुम जीना सीख जाते हो।
इसका मतलब ये नहीं कि मौत का इंतजार करें।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये समझना कि जीवन सीमित है, और ये समझ हमें छोटी छोटी बेकार की चिंताओं से आजाद करती है। हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वाकई मायने रखती हैं।
उन्होंने वो बौद्ध कहानी भी सुनाई थी ना, कंधे पर बैठी चिड़िया वाली।
हाँ, कि कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया है जो रोज पूछती है, क्या आज वो दिन है, क्या मैं तैयार हूँ। ये तैयारी का भाव जगाती है।
और उन्होंने अपनी बीमारी पर जो खुद तरस खाने का भाव आता है, उससे कैसे निपटा, वो भी बहुत दिलचस्प था।
बहुत। मौरी कहते थे कि वो सुबह खुद को थोड़ा वक्त देते थे, रोने के लिए, अपनी हालत पर दुख मनाने के लिए, लेकिन फिर वो उसे वहीं रोक देते थे।
मतलब महसूस किया पर उसमें डूबे नहीं।
बिल्कुल। ये भावनाओं को स्वीकार करने और फिर उनसे थोड़ा डिटैच होकर, थोड़ा अलग होकर देखने की कला है।
इसी से जुड़ा हुआ है पछतावे का मुद्दा, रिग्रेट्स।
हाँ, मौली कहते थे कि जिंदगी में हमेशा एक विरोधाभासों का तनाव रहता है। मतलब हम जो करना चाहते हैं और जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, उसके बीच का खिंचाव। तो पछतावे से बचने का तरीका ये है कि जो जरूरी काम है, जैसे प्यार जताना, माफी मांगना, उन्हें कल पर मत टालो, अभी करो।
उनकी अपनी कहानी में भी एक गहरा अफसोस था ना।
हाँ, एक दोस्त को माफ न कर पाने का। उन्होंने अभिमान में उस दोस्त से नाता तोड़ लिया था, और सुलह होने से पहले ही उस दोस्त की मौत हो गई। ये एक तरह की चेतावनी है कि अहंकार को रिश्तों के बीच मत आने दो।
ये सारी बातें हमें दूसरे बड़े थीम की तरफ ले जाती हैं, कि हम अपना आंतरिक संसार कैसे बनाएं, खासकर भावनाओं, उम्र बढ़ने और समाज के दबावों के बीच।
मौरी ने भावनाओं को पूरी तरह महसूस करने की बात कही, लेकिन फिर उनसे नियंत्रित न होने की सलाह दी। इसे वो डिटैचमेंट या अलगाव कहते थे।
मतलब भावना को पहचानो, उसे जियो, पर उस पे बह मत जाओ।
हाँ, और उम्र बढ़ने को लेकर उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग था। आज के समाज में जहाँ जवानी को ही सब कुछ माना जाता है।
हाँ, जहाँ बूढ़े होने से सब डरते हैं।
मौरी ने सिखाया कि उम्र बढ़ना कोई गिरावट नहीं है, बल्कि ये विकास है, संचय है। हर गुजरा हुआ साल आपके अंदर ही रहता है।
और जैसे जैसे वो ज्यादा निर्भर होते गए,
उन्होंने उसमें भी एक गरिमा और शांति खोजी। देखभाल किए जाने के जो छोटे छोटे पल थे, उनमें प्यार महसूस किया। वो कहते थे ये उन्हें बचपन की याद दिलाता है, जब उन्हें बिना शर्त प्यार मिलता था।
और इसी आत्मिक मजबूती से जुड़ा है उनका वो आइडिया कि हमें अपनी उपसंस्कृति बनानी चाहिए।
हाँ, मतलब समाज जो भौतिकवाद, कंपटीशन और सतही चीजों पर जोर देता है, उसे आंख बंद करके फॉलो मत करो,
बल्कि अपने जो पर्सनल वैल्यूज हैं, जैसे प्यार, करुणा, समुदाय, दूसरों की सेवा,
उनके आधार पर अपनी जिंदगी जियो। ये बाहरी दबावों के खिलाफ एक सचेत, एक कॉन्शियस चॉइस है।
बिल्कुल, उन्होंने पैसे को लेकर भी यही कहा था।
सही बात है कि पैसा या जो भौतिक चीजें हैं, वो कभी भी प्यार, कोमलता या अपनेपन की भावना की जगह नहीं ले सकती।
ऐसा काम ढूंढना जरूरी है जिसका कोई अर्थ हो, सिर्फ ज्यादा तनख्वाह नहीं।
हाँ, और ये सब बातें हमें तीसरे और शायद सबसे अहम थीम पर लाती हैं, रिश्तों का महत्व, प्यार का महत्व।
मौरी के लिए तो प्यार ही सब कुछ था। उनका एक और बहुत प्रसिद्ध कोट है, प्यार ही एकमात्र तर्क संगत कार्य है।
कितना सीधा और गहरा है ये।
चाहे वो परिवार हो, शादी हो या दोस्ती, असली खुशी और संतोष प्यार देने और पाने में ही है।
जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर होता गया, उनके परिवार और दोस्तों का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।
उन्होंने कहा भी, अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आज लोगों के पास खड़े होने के लिए कोई नींव, कोई सुरक्षित जमीन नहीं है।
अपनी लंबी शादी के अनुभव से भी उन्होंने कुछ सबक साझा किए थे।
हाँ, जैसे सम्मान, समझौता, खुलकर बात करना और साझा मूल्यों का होना कितना जरूरी है एक लंबे रिश्ते के लिए।
और प्यार सिर्फ जीवन काल तक ही नहीं रहता।
नहीं, मौरी ने कहा कि प्यार वो तरीका है जिससे आप जाने के बाद भी जीवित रहते हैं उन सभी लोगों के दिलों में जिन्हें आपने छुआ है, जिनका आपने पोषण किया है। मृत्यु जीवन को समाप्त करती है, रिश्ते को नहीं।
क्या बात है, ये बहुत सुकून देने वाली बात है। और रिश्तों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है माफी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया।
हाँ, उनका संदेश था, मरने से पहले खुद को माफ करो, फिर दूसरों को माफ करो।
खुद को माफ करना शायद ज्यादा मुश्किल होता है कई बार, पर मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। कड़वाहट और अहंकार को छोड़ देना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
और अंत में जब मिच ने पूछा कि अगर वो एक दिन के लिए पूरी तरह स्वस्थ होते तो उनका आदर्श दिन कैसा होता,
उनका जवाब इतना साधारण था कि हैरान कर दे।
हाँ, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, क्या था वो?
सुबह उठना, अच्छा नाश्ता करना, थोड़ी सैर पर जाना, दोस्तों के साथ लंच करना, शाम को थोड़ा नाचना और फिर चैन की नींद सो जाना।
बस साधारण मानवीय रिश्ते और रोजमर्रा के सुख।
बिल्कुल, यही है मौरी की शिक्षाओं का निचोड़।
और ये हमें किताब के जो मुख्य संदेश हैं उनकी ओर ले जाता है। सबसे पहला तो शायद यही है कि मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना हमें बेहतर ढंग से जीना सिखाता है।
हाँ, ये डरने की बात नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से पूरी तरह से जीने का एक साधन है, तात्कालिकता का भाव लाता है।
दूसरा, हमें समाज के जो भौतिकवादी दबाव हैं उनका विरोध करना चाहिए और सफलता को अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहिए।
अपनी निजी संस्कृति बनाना जो प्यार, करुणा और समुदाय पर आधारित हो। ये आज के समय में, भारत में भी, जहां इतना बाहरी दिखावा और स्टेटस का दबाव है, कितना जरूरी है।
तीसरा और शायद सबसे अहम, प्यार और रिश्ते ही जीवन का केंद्र है।
सही, सच्ची खुशी और सार्थकता इन्हीं से मिलती है। काम, पैसा, शोहरत, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्तों का पोषण करना, उनमें निवेश करना सबसे जरूरी है। जैसा मौरी ने कहा, मानव परिवार में निवेश करें, लोगों में निवेश करें।
और चौथा, माफी की ताकत।
हाँ, दूसरों को और खुद को माफ करना। मन में बोझ लेकर जीना खुद को ही जहर देने जैसा है। अहंकार को छोड़कर माफ कर देने में ही असली आजादी है।
इस किताब में सच में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो याद रह जाती हैं। हमने कुछ का जिक्र तो कर ही लिया है।
हाँ, जैसे वो मुख्य विचार, जब तुम मरना सीख जाते हो तब तुम जीना सीख जाते हो। ये बार बार याद दिलाता है कि समय सीमित है, तो उसे उन चीजों पर लगाओ जो वाकई जरूरी हैं।
और ये भी, मृत्यु जीवन को समाप्त करती है, रिश्ते को नहीं। ये हमें एक तरह से सांत्वना देता है कि हमारे प्रियजनों का प्रभाव और उनका प्यार उनकी शारीरिक अनुपस्थिति के बाद भी बना रहता है। रिश्ते अमर हो जाते हैं।
मौरी का एक और मूल मंत्र था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीखना है कि प्यार कैसे देना है और इसे अंदर आने देना है।
हाँ, ये दोनों तरफा प्रक्रिया है, सिर्फ देना ही नहीं लेना भी सीखना है। कई बार हम गर्व या झिझक में प्यार को स्वीकार करने से हिचकिते हैं।
बिल्कुल, और अंत में माफी वाला सबक, मरने से पहले खुद को माफ करो, फिर दूसरों को माफ करो। ये माफी की तात्कालिकता और महत्व को बताता है, खासकर खुद को माफ करने को, ताकि मन शांत रह सके।
तो इन सब गहरी बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बातें तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें जीना जरूरी है।
हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका शायद हो सकता है अपनी जिंदगी का एक तरह से ऑडिट करना।
ऑडिट कैसे?
मतलब ये देखना कि जो काम मैं रोज कर रहा हूं, क्या वो मेरे असली मूल्यों से मेल खाते हैं? क्या मैं अपना कीमती समय उन चीजों पर लगा रहा हूं जो मेरे लिए वाकई मायने रखती हैं?
अच्छा,
जैसे शायद रोज थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ बिताना, या कोई ऐसा शौक जिसे भूल गए थे उसे फिर से शुरू करना।
हाँ।
और दूसरा है अपने रिश्तों को बेहतर बनाना।
कैसे?
खुलकर प्यार और तारीफ जाहिर करना, किसी की बात ध्यान से सुनना बिना फोन या टीवी में ध्यान भटकाए, जैसे मिच ने सीखा था।
हाँ, वो फोन रखना।
पुराने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करना, शायद किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार को फोन करना जिनसे बरसों से बात नहीं हुई है।
ये मुश्किल हो सकता है पर जरूरी है, और भावनात्मक लचीलापन भी।
हाँ, इमोशनल रेजिलियंस, मौरी की तरह अपनी भावनाओं को महसूस करना, चाहे वो दुख हो, डर हो या गुस्सा, और फिर उनसे थोड़ा अलग होकर उन्हें समझना ताकि वो हम पर हावी ना हो।
उन्हें स्वीकार करना पर उनके काबू में ना आना।
और हाँ, पैसे और महत्वाकांक्षा को सही नजरिए से देखना।
ये भी एक बड़ा पॉइंट है, सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या पद नहीं है। क्या हम अपने काम से दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्या हमारे रिश्ते मजबूत हैं?
शायद अपनी खर्च करने की आदतों पर सोचना या समाज के लिए कुछ करने पर ज्यादा ध्यान देना।
और आखिर में उम्र बढ़ने और मृत्यु के डर का सामना करना।
उम्र को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखना। हर पड़ाव के अपने अनुभव और ज्ञान को महत्व देना
और मृत्यु की सच्चाई को एक प्रेरणा बनाना ताकि हम जीवन को पूरी तरह जिएं बिना किसी बड़े पछतावे के।
सही कहा, ये सब सोचने वाली और अमल करने वाली बातें हैं।
जब मैं इस किताब के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मौरी के आदर्श दिन की सादगी प्रभावित करती है।
हाँ, मुझे भी। कैसे सच्ची खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों और रिश्तों में छिपी है। आज के भागदौड़ वाली दुनिया में ये याद रखना कितना जरूरी है।
और मौरी की कमजोरी में जो ताकत छिपी थी, उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी भेद्यता को ही अपनी सबसे बड़ी सीख का जरिया बना लिया।
बिल्कुल। और मेरे लिए वो विचार कि प्यार मौत के बाद भी कायम रहता है और अपनी संस्कृति खुद बनाने की शक्ति,
हाँ वो बहुत शक्तिशाली है।
ये हमें बाहरी दबावों से आजाद करता है और अपने मूल्यों के हिसाब से जीने की हिम्मत देता है। तो कुल मिलाकर संदेश शायद यही है कि एक सार्थक जीवन प्यार और मानवीय रिश्तों की नींव पर ही खड़ा होता है।
और सबसे गहरी बुद्धिमत्ता अक्सर सबसे मुश्किल हालात से ही निकलती है। मौरी ने मरने की प्रक्रिया को जीने की कला सिखाने की एक भूमिका निभाई और मिच का लक्ष्य उस ज्ञान को पाना और बदलना बन गया, और उन्होंने ये बखूबी किया।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।